नौकरी की किताब 17:19 अय्यूब 31:1 उसकी आंखों से वाचा। जॉन वाल्टन द्वारा। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह 17:19 अय्यूब अध्याय 31:1 उसकी आंखों से वाचा है। परिचय 12:25 से 1:19। हम एलीहू का प्रवचन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें उतरें, मैं अय्यूब की मासूमियत की शपथ में एक विशिष्ट कविता से निपटना चाहता हूँ। मैं अध्याय 31:1 की बात कर रहा हूँ। एनआईवी अनुवाद करता है, मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बनाई है कि मैं किसी युवा महिला को कामुक दृष्टि से नहीं देखूंगा। यह उनकी श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए एक दिलचस्प कविता है, और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इसे ध्यान से देखना चाहता हूं कि हम समझें कि यह क्या कहता है। इस खंड के अधिकांश भाग के लिए मैं वास्तव में अपनी टिप्पणी पढ़ूंगा। यह नौकरी की पुस्तक पर एनआईवी एप्लीकेशन कमेंट्री है। मैंने पहले इसका उल्लेख किया है। यह उस किताब से थोड़ा अधिक विस्तार में है जो मैंने ट्रेम्पर लॉन्गमैन के साथ लिखी थी, जिसका नाम था हाउ टू रीड जॉब। इसलिए मैं इस परिच्छेद की हिब्रू को समझने की विशिष्टताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। वाचा 1:19-148। कविता एक अनुबंध के संदर्भ के साथ शुरू होती है और यह वहाँ काफी मानक शब्दावली है। वाचा बनाने के लिए शब्द और वाचा के लिए शब्द वही हैं जो आपको बाइबल के पाठ में कहीं और मिलेंगे। इसलिए एक वाचा अक्सर एक जागीरदार के साथ किया गया एक समझौता होता है, और यह सब बताता है कि अय्यूब की नज़र में जागीरदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्हें नियंत्रण में लाया जा रहा हो। यह संविदा भाषा का जोर होगा। एटबोनेन वासना नहीं बल्कि खोज या पूछताछ 1:48 से 3:41। चूंकि यह श्लोक यौन नैतिकता के बारे में एक स्पष्ट कथन प्रतीत होता है, इसलिए हमें विवरणों पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। निषिद्ध गतिविधि का वर्णन करने वाली दूसरी पंक्ति में क्रिया एटबोनेन है। यह रूट बिन का हितपेल रूप है जो पुराने नियम में 22 बार और जॉब की पुस्तक में 8 बार आता है। इनमें से अधिकांश उदाहरण किसी वस्तु की बारीकी से या सावधानी पूर्वक जांच का वर्णन करते हैं। केवल एक घटना में भजन 37:10 वह क्रिया है जिसके बाद यह विशेष पूर्वसर्ग अल आता है। हिब्रू में यह महत्वपूर्ण है, अलग अलग पूर्वसर्गों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया पूर्वसर्ग के आधार पर अलग अलग अर्थ ले सकती है। इसलिए हम इस एक घटना को बहुत ध्यान से देखते हैं जहां इस क्रिया रूप के बाद इसी पूर्वसर्ग का उपयोग किया जाता है। वहां इसका तात्पर्य दुष्टों की तलाश करना है, लेकिन उस मामले में उन्हें ढूंढना नहीं, न तो यह उदाहरण और न ही हितपेल फॉर्म की कोई अन्य घटना कोई यौन बारीकियां रखती है। इसे लाने के बारे में यह हमारे लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। एनआईवी संदर्भ के आधार पर इसके अनुवाद पर पहुंचा है, शब्द के अन्य उपयोगों के आधार पर नहीं। यह टकटकी की व्याख्या वासनापूर्ण के रूप में करता है क्योंकि इसकी वस्तु कुंवारी है। हिब्रू शब्द बेतूला है, लेकिन यह व्याख्या संतोषजनक ढंग से यह नहीं बताती है कि अय्यूब की नज़र में निषेध बेतूला तक ही सीमित क्यों है। यदि यौन नैतिकता वास्तव में मुद्दा है, तो इस अनुबंध का किसी भी महिला तक विस्तार करना अधिक स्वाभाविक होगा, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। बेतूला कुंवारी और या अपने पिता के संरक्षण में महिला 3:41 से 5:20। बेतूला फिर से कुंवारी एक सामान्य अनुवाद है, लेकिन यह वास्तव में महिला की यौन स्थिति या स्थिति नहीं है जो बेतूला शब्द द्वारा संप्रेषित की जाती है। यह एक ऐसी महिला को संदर्भित करता है जो अपने पिता के संरक्षण में रहती है। बेशक ज्यादातर मामलों में इसका मतलब यह है कि उसे कोई यौन अनुभव या यौन मुठभेड़ नहीं हुई है। तो वह कुंवारी है। लेकिन पुराने नियम में एक या दो घटनाएं हैं जहां कोई व्यक्ति जिसने स्पष्ट रूप से यौन संबंध बनाए हैं वह अभी भी बेतुलाह है। इसलिए हमें सावधान रहना होगा और हम शब्दावली को कैसे वर्गीकृत करते हैं। जरूरी नहीं कि शब्द उन्हीं श्रेणियों में आए जैसे वे अंग्रेजी वर्गीकरण प्रणालियों में आते हैं। इसलिए इसराइलियों को किसी महिला को इस आधार पर वर्गीकृत करने में अधिक रुचि थी कि वह किसके संरक्षण में है, उसका कोई पति है या नहीं, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है या नहीं। यह उनकी वर्गीकरण प्रणाली है, न कि यह कि उसने यौन संबंध बनाए हैं या नहीं नहीं, जो हमारी वर्गीकरण प्रणाली है। तो यह एक ऐसा मामला है जिसे अय्यूब नहीं देखेगा। यदि कोई लड़की अपने पिता के संरक्षण में रहती है तो इसका मतलब है कि वह शादी के लिए एक व्यवहार्य उम्मीदवार है और इस समय समाज सहज रूप से बहुविवाह वाला था। तो यह विचार कि अय्यूब शादी के लिए एक महिला पर विचार कर रहा होगा वही यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। माँ क्या 5:20 से 5:46। इसलिए इस क्रिया की बेहतर समझ तक पहुंचने के लिए हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अय्यूब ने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है। इतना तो स्पष्ट है। कविता का दूसरा भाग एक सामान्य प्रश्नवाचक कण माह से शुरू होता है जिसका हिब्रू में अर्थ है क्या। हालांकि इस कण का अय्यूब द्वारा उपयोग पूरी किताब में सुसंगत है। अधिकांश अनुवाद इस विशेष मामले में इसे प्रस्तुत नहीं करना चुनते हैं। भजन 37:10 का योगदान 5:46 से 7:51। आमतौर पर जॉब में यह कण एक अलंकारिक प्रश्न प्रस्तुत करता है जो यहां भी संभव लगता है। भजन 37:10 जिस श्लोक का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं वह इस क्रिया और पूर्वसर्ग का उपयोग करता है और पाठक को दुष्टों के स्थान को चारों ओर देखने के लिए निर्देशित करने के लिए इस श्लोक के समान क्रिया का उपयोग करता है। इसके संदर्भ में यह निर्देश बताता है कि यदि कोई दुष्टों की स्थिति के बारे में परिश्रम पूर्वक पूछताछ करता है तो खोज से कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि हम इस अवलोकन को अय्यूब के कथन पर लागू करते हैं तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, चूंकि मैंने अपनी आंखों के संबंध में एक वाचा बांधी है तो मुझे बेटुला के बारे में पूछताछ करने में क्या दिलचस्पी होगी। यानी शादी के लिए उसकी उपलब्धता के बारे में जांच करना या पूछताछ करना। बेतुला के बारे में पूछताछ करना किसी वेश्या के बारे में पूछताछ करने के समान नहीं है। यदि पाठ वास्तव में वासना के विरुद्ध बोल रहा था तो हम क्रिया हमाद के उपयोग की अपेक्षा करेंगे। यह अधिक संभावित विकल्प होगा। इसके अलावा बेतुला आम तौर पर एक कुंवारी का संकेत देता है, लेकिन कौमार्य शब्द के मूल अर्थ के वास्तविक प्रतिनिधि की तुलना में अधिक परिस्थितिजन्य है। खास बात यह है कि बेतुला एक विवाह योग्य लड़की है जो अभी भी अपने पिता के घर में है और उनके संरक्षण में है। विवाह की व्यवस्था करने के लिए बेतुल्हा से पूछताछ की जाएगी। ऐसी जांच संभवतः वासना से प्रेरित हो सकती है। हम न्यायाधीशों 14:02 में सैमसन के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह कई विकल्पों में से केवल एक है और स्वचालित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वास्तव में किसी भी व्यवस्थित विवाह की शुरुआत बेतुलाह के बारे में पूछताछ करने से होती है। हरम और रुतबा वासना नहीं मुद्दा है। 7:51 से 9:25। इस चर्चा के प्रकाश में अय्यूब की आंखों के संबंध में उसकी वाचा को तपस्या के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसकी पहले से ही एक पत्नी है। तार्किक विकल्प यह है कि कथन हरम के अधिग्रहण से संबंधित है। जब आप किसी पत्नी के बारे में पूछताछ करते हैं तो आप यही करते हैं। प्राचीन विश्व में एक बड़ा हरम शक्ति और स्थिति का सूचक था। अय्यूब कई पत्नियों और रखैलियों को इकट्ठा करने के विचार से दूर हो गया है और वह इस बात को रेखांकित करने के लिए इस निर्णय को अपनी आंखों के संबंध में एक वाचा के रूप में चित्रित करता है कि वह शिकार पर भी नहीं है। यह प्रतिज्ञा अध्याय 31 श्लोक 24 और 25 में उनके कथन को प्रतिबिंबित करती है कि वह धन की खोज में लीन नहीं है। अय्यूब ने न तो गरीबी का व्रत लिया है और न ही शुद्धता का व्रत लिया है, बल्कि वह प्रतिष्ठा की जुनूनी खोज से बचता है। यह व्याख्या लेखक द्वारा चुने गए प्रत्येक शब्द का ध्यान रखती है और इसलिए सबसे संभावित व्याख्या प्रस्तुत करती है। तदनुसार इस श्लोक का यौन नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों। इसके बजाय यह अय्यूब की कई घोषणाओं के अनुरूप है कि उसने अपने पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए लुभावनी कार्रवाई करके सत्ता को मजबूत करने या उसका दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं किया है। हिब्रू पाठ को ध्यान से पढ़ने का महत्व 9:25 से 9:57। तो हम पाते हैं कि कविता का पाठ जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा अलग है। यही परिणाम हो सकता है जब हम हिब्रू पाठ को ध्यान से पढ़ने में संलग्न होते हैं और फिर यह देखने का प्रयास करते हैं कि तर्क के तार्किक प्रवाह के प्रकाश में हमें क्या मिलता है। यह हमें एक अलग दृष्टिकोण दे सकता है। अब हम एलीहू की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 19 अय्यूब 31 एक उसकी आंखों से वाचा है। 9:57